चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 और श्लोक क्रमांक 29। कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। इनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लका नाम पिहतां अंतर्हितोऽन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिष एनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामपि हतां अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिष एनोपशान्तिर्भूतानां शुल्लकानामपि हतां अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिष। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की। शब्दार्थ इस प्रकार से है, एन जिस विधि से उपशांति समस्त इच्छाओं की संतुष्टि, भूतानाम जीवों की, शुल्लकानाम अत्यंत पतितों की, अपि यद्यपि इहताम अनेक वस्तुओं की कामना करते हुए, अंतरितः छिपे हुए, अंतरुदय हृदय के भीतर, कस्मात क्यों न हमारे वेद जानता है, न नहीं आशीष इच्छाएं। अनुवाद इस प्रकार से हैं, जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण होती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे? तात्पर्य, सिद्ध भक्त अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभावों तथा इच्छाओं को समझ सकते हैं। वे अभक्तों को भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। तुच्छ से तुच्छ जीव भी जो कुछ चाहता है भगवान उसको अंकित करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। यदि अभक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती है तो फिर भक्तों की क्यों नहीं होंगी? शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और यदि वह अपने अंतस्थल से जहाँ भगवान का वास है चाहता है और यदि वह किसी अन्य भाव से रहित है तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे? यदि निष्ठावान भक्त भगवान या अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उनके निष्ठा को समझ लेते हैं। इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधित सारे कार्य करता जाता है तो अंत में सफलता प्राप्त होगी। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांकितं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
हिमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भगवान और आपके प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धता के लिए कुछ बोल सकूँ और जो भी बोलूँ परंपरा में ही बोलूँ। तो ये हम आज चर्चा करने वाले हैं श्लोक क्रमांक 29। तो ये पिछले 22 श्लोक से मतलब 30.22 से जो प्रचेताज हैं उनकी प्रार्थनाएँ हैं वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी भी गुणगान चल रहा है, अगले कुछ श्लोकों तक ये चलते रहेगा। तो जो प्रचेताज जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, गुणगान कर रहे हैं भगवान का, अलग अलग गुण का बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वैसे वो बोलते हैं कि आप क्लेशों को हरण करने वाले हैं, मन तथा वाणी से अधिक फास्ट हैं। जैसे हम देखते हैं जो गजेंद्र हैं, जब उन्होंने भगवान को बुलाया तो भगवान इतने फास्ट आए कि पता भी नहीं चला गजेंद्र को इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वैसे आगे वो बोलते कि आपका दिव्य रूप का आनंद से ही पूर्ण, आपका जो स्वरूप है वो दिव्य रूप है, आनंद से पूर्ण है और आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं। और आगे बोलते कैसे आपके नाभि से पुष्प निकलता है और कमल की माला आपके गले में सुशोभित होती है और आप जो है समस्त जो जीव है उनके हृदय में रहते हैं साक्षी के रूप में। जैसे प्रभुपाद बताते कैसे दो पंछी होते हैं एक पेड़ के ऊपर, एक पंछी जो है वो खाता है और दूसरा जो है वो निरीक्षण करता है कि उसके जो एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो वैसे ही जो परमात्मा है जीवात्मा के जो कार्य है उनके ऊपर निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यहाँ पर आगे बोल रहे हैं प्रचेताज कि हम जैसे जो कष्ट भोगने वाले जीव है उनके ऊपर भी अनंत अहेतु की कृपा करते हैं भगवान। तो देखेंगे हम यहाँ पर मैं मोस्टली दो जो टॉपिक हैं जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करूँगा। एक है कि भगवान की दया और दूसरे हैं कि जीवों की इच्छा, तो इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे। तो पिछला श्लोक जो है वो कंटिन्यूअस हम देखते हैं कि पिछले श्लोक में ही भगवान जो है अपना दया का एक छोटा सा भाग दिखा रहे हैं। जो जीव है दीन जीव, पिछले श्लोक में बोलते हैं कि दीन जीव जो है उनके ऊपर, दीन भक्तों के ऊपर भगवान दया करते हैं अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में विस्तारित कर। तो ये अर्च विग्रह जो है जो भक्त है वो घर पे ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। मोस्टली जो मंदिर से दूर रहते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या फिर और ज़्यादा दूर रहते हैं, उनके घर से मंदिर बहुत दूर है, उनके घर में वो अर्च विग्रह ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। जब हम आईलिड्स कर रहे थे तब जो हमारे डीटी मिनिस्टर हैं हिज ग्रेस नरसिंह कवच को उनको ये सवाल पूछा था प्रभु जी कि जब घर में विग्रह आते हैं तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि विग्रह की सेवा अपने बच्चों के समान करनी चाहिए। अगर घर में दो बच्चे हैं और आप गौर निताई लेके आते हैं तो समझना कि आपके घर में चार बच्चे हैं। तो वो बता रहे थे कैसे कि जो बच्चों को हम डेली स्नान करवाते हैं उनको ऐसा नहीं कि डेली सजाते हैं, लेकिन सिंपल कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही डेली आप भगवान की सेवा करते रही हैं, सिंपल सा कपड़ा ज्वेलरी पहना सकते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होता है या उनका बर्थडे, जैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो उनको नए कपड़े दिए जाते हैं, सजाया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, अच्छा पकवान दिया जाते हैं, वैसे जब भगवान का आविर्भाव होता है, जैसे अभी थोड़ी दिनों में चैत्र महाप्रभु का आविर्भाव दिन आ रहा है, तो उस समय उनको नए वस्त्र, अच्छा भोग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दे सकते हैं। तो वैसे वो बहुत सारी चीज़ें बताई, तो बोल रहे थे कि जो दूर है वो घर में ला सकते हैं, लेकिन जो मंदिर के पास है उनका क्या। जब ऐसा सवाल पूछा गया तो प्रभु जी बोले कि अगर मंदिर के पास रहते तो वो मंदिर में आकर सेवा कर सकते हैं, जैसे हमारे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, गौरनीता हैं, शिल प्रूपाद हैं, तो इनकी सेवा कर सकते हैं, और पास में है तो कभी भी आ सकते हैं, सेवा के टाइम में आ सकते हैं। अगर सेवा सुबह है ना 3:30 बजे शुरू हो रहा है तो दूर से आने को दिक्कत होगा, लेकिन नज़दीक है तो वो जल्दी आ सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। और ये भी बोले कि अगर पास में रहते तो अर्ची वगैरह रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिनकी सेवा करना चाहते हो यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे भगवान जो है, अगर हम उनके पास हैं तो भगवान भी हम पास आते हैं, अगर उनके मंदिर के दूर हैं तो भगवान पास आ जाते हैं। तो ऐसे जो भगवान जो है वो कुछ डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे 56 भोगी चाहिए डेली, या फिर मुझे जो द्वारका में जैसे वर्शिप करते हैं तो वैसा, या लक्ष्मी नारायण की वर्शिप करते हैं वैसा नहीं चाहिए। तो सिंपल जो भी ना पिछले श्लोक में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये अगर आप भक्ति भावना से अगर आप अर्पण करते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और इसके लिए वो अपना एग्जाम्पल भी सेट करते हैं, जैसे दुर्योधन ने 56 भोग के लिए बुलाया था और विदुर जी ने भी उसी समय बुलाया था, तो भगवान ने क्या देखा कि विदुर जी का जो भाव है वो देखा, ना कि 56 भोग देखें। तो ऐसे ही जो भक्त हैं, दीन भक्त, यहाँ पर जो पिछले श्लोक में बताते हैं कि दीन भक्त जो हैं इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो हरि, हरि मतलब सब क्लेशों से दूर करने वाला, उसके और एक शब्द आता है हरि मेदसे। तो हरि मेदसे मतलब बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने का सदैव प्रयास करने वाले, और उस प्रयास करने के लिए हमेशा योजना बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास करने के लिए योजना कर रहे हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वो तो इच्छा करता है कि हम इस माया के चंगुल में ही रहें, लेकिन भगवान जो है अलग अलग समय बार बार जो है अलग अलग योजनाएं बनाते हैं कि कैसे इस जीवात्मा को जो माया के चंगुल में फंसा है उसे कैसे बाहर निकालें। तो वही देखते हैं हम, जैसे अगर योजना बना रहे हैं किसी को कष्ट से दूर निकालने के लिए, मतलब वो अपनी दया जो है उनके ऊपर दिखा रहा है। इसलिए भगवान के अलग अलग नाम हैं, जैसे दीनानाथ है, दीनदयाल है, करुणा सिंधु है, तो ऐसे जो अलग अलग नाम है भगवान के, उसी के कारण ये नाम गिरे हैं। तो ये दया जो है, कंपैशन ब्रिंग्स फुलफिलमेंट टू द हार्ट, बट सेल्फिश डिजायर सिंपली एजिटेट द हार्ट। जो दया है हमारे हृदय की पूर्णता लाती है, लेकिन वही अगर जो स्वार्थी भावना है या स्वार्थी इच्छाएं हैं वो हमारे हृदय को उत्तेजित करते हैं। जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं कि दो 10वां कंध पढ़ने से हमारा जो एजिटेशन है वो निकल जाना चाहिए, और उसके बाद भगवान की लीलाओं में या भगवान के स्मरण में हम एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ऐसे तो भगवान जो है अपनी दया दिखाते हैं अलग अलग माध्यमों से। तो हम सब एक इच्छा किए और भगवान ने हमें यहाँ पर भेज दिया। हमारी एक ही इच्छा थी कि भगवान जो आपकी तरह हमें आनंद लुटाना है, तो भगवान बोलते व्हाई नॉट, यू कैन बट नॉट हियर, मतलब हम एंजॉय कर सकते हैं, आनंद लूट सकते हैं, लेकिन भगवत धाम में नहीं। तो तुम्हारे लिए, मतलब हम जीवों के लिए, भगवान बोलते कि मैं ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि आप वहां पर बेझिझक जो है आनंद लूटने का प्रयास कर सकते हैं। आनंद मिले ना मिले उसका गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा भौतिक जगत जो है, ये 14 इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है, वे भगवान क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई पिता होता है, पिता के साथ लड़का झगड़ा करता है और पिता बोले तुम घर से निकल जाओ, वो सिर्फ निकाल देते हैं घर से, बाकी कहाँ रहेगा क्या करेगा उसका चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जो भगवान है, जो हमारे परम पिता है, वो तो बोलते कि यहाँ से जाओ वहाँ एंजॉय करो। लेकिन देखिए कृष्ण ऐसे पिता हैं, वो सोचते हैं, योजना बनाते हैं कि अभी इसे एंजॉय करना है तो एंजॉय अकेले थोड़ी करेगा, वो थोड़ी ना आत्माराम है, तो ये तो जीवात्मा है, तो जीवात्मा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए सब अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो इसलिए इसके अगर हम देख सकते कि हमारे परम पिता कितना दयालु है। तो ये द्वेष जो है, ये द्वेष का मतलब ये है कि दूसरों का आनंद देख के हमारा जलन होना, दूसरों का आनंद, दूसरे का प्रगति या दूसरे का किसी भी चीज में जो प्रगति होता है तो वो देख के हमारे अंदर जलन होती है, तो उसे द्वेष कहा जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद वो क्या वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि ये वत्स तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो बोलो मैं तुम्हें क्या वरदान दूँ, लेकिन ये कंडीशन है। अभी कलयुग का व्यक्ति है, हम देखते हैं कि हर है ना जो बिलबोर्ड रहता है उधर स्कीम देते हैं लेकिन उसके सामने स्टार लगाते हैं, मतलब कंडीशन अप्लाई। तो भगवान ने भी सोचा चलो हम भी लगा के देखते हैं, बोले कि कंडीशन है। तो वो व्यक्ति बोलते क्या कंडीशन है, जो भी तुम मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा, ये कंडीशन है। वो व्यक्ति सोचता है अगर एक ऑटोमेटिक गाड़ी मांगूंगा तो दो उधर चला जाएगा, एक बंगला मांगूंगा तो दो बंगला उधर चले जाएंगे, जैसे राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की जय, श्री गौरनिता श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत सोचने के बाद वो सोचता है अगर मैं मेरा एक आँख फोड़ दूँ तो उसकी दो आँख फूट जाएंगे, वो पूरा अंधा हो जाएगा। तो सोचिए कि इसे बोलते द्वेष, मुझे मिले ना मिले लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए, ये द्वेष है। तो वही जो बलदेव विद्याभूषण जो है वे दुर्योधन का काम से तुलना करते हैं। जो काम जो है, काम मतलब वो खुद एंजॉय करना चाहता है, जो कामी व्यक्ति है वो खुद एंजॉय करना चाहता है, जो द्वेषी व्यक्ति है खुद को खुद एंजॉय करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन दूसरों को नहीं देने नहीं मिलना चाहिए ऐसा उसका इच्छा रहता है। तो वैसे ही दुर्योधन ने सेम ऐसे ही किया, दुर्योधन जो है वो खुद एंजॉय करना चाहता था, कामी था। हालांकि कृष्ण ने क्या बोला था, कुछ बड़ा कुछ डिमांड नहीं रखा था कॉम्प्रोमाइज के लिए, सिर्फ 5 गांव, ऐसे 5 गांव कि जिसमें कुछ आए नहीं भी, सिर्फ नाम के लिए हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े गांव हैं उसमें सब कुछ है, ऐसा भी कुछ कंडीशन नहीं रखा था, सिर्फ नाम के लिए 5 गांव दो। लेकिन दुर्योधन चाहता था कि सब कुछ मैं अकेला ही एंजॉय करूँ। तो अंत में उसका क्या हुआ हम सबको पता ही है। तो ये द्वेष और काम, इसमें ये अंतर है। तो हम द्वेषी है, द्वेष करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, बाद में फिर बाकी अनर्थ भी हमारे अंदर आ जाते हैं, उसके कारण फिर हम इस भौतिक जगत में चक्कर घूमते रहते हैं, अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग भुवनों में जाकर। तो भगवान जो है हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, खुद भी आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को पहले प्रभुपाद लिखते हैं कि परित्राणाय साधु नाम, तो जो भक्तों को बचाने के लिए खुद भगवान आ जाते हैं, खुद आते हैं, भक्तों को भेजते हैं, या फिर अपने अलग अलग रूप या एक्सपांशन को वो हमारे पास दे देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो भगवान, देखो भगवान और भगवान का नाम, इसमें कुछ अंतर नहीं है। हम नाम लेके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, कोई भगवान का महाप्रसाद लेके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार, महाप्रसाद का अलग अलग प्रकार होता है। महाप्रसाद मतलब सिर्फ खाने की ही चीज़ नहीं, लेकिन महाप्रसाद ही मतलब भगवान का हार भी हो सकता है, भगवान का क्लोथ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, भगवान की गले की माला, उसका हम है ना साक्षी माला बनाते हैं, वो हो सकता है। तो ये भगवान का नाम जो है इतना दयालु है, इतना पोटेंट है कि वो हमें बड़े से बड़े पाप से मुक्त कर सकता है और यहाँ से वापस हमारे घर भगवतधाम लेके जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में, सॉरी राजा जंगल में जाता है शिकार के भाव से, वो हम पीछे देख रहे थे, वो पुरंजन वाला वो नहीं, ये थोड़ा अलग है, वो भी शिकार के लिए गया था, तो लेकिन ये थोड़ा अलग स्टोरी है, पद्म पुराण में आता है। कि राजा जो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए जाता है, कि उसे दिखता है कि हिरन भाग रहा है, तो उसे मारने के लिए वो अपना तीर छोड़ता है, लेकिन वो जब छोड़ता है तो झाड़ी से निकल जाता है वो हिरन, और तीर जो है झाड़ी के उस साइड में चला जाता है, और वहां से एक व्यक्ति का आवाज आता है। जब आवाज आया तो इसे समझ में आया राजा को कि ये बाण किसी व्यक्ति को लगा है, ना कि किसी प्राणी को लगा है। और राजा वहां पर जाता है, देखता है कि एक साधु, एक ब्राह्मण जो है उसको ये बाण लगकर उसकी वहां पर मृत्यु हो गई है। राजा जब ये देखता है तो बहुत शोक करने लगता है, पश्चाताप करने लगता है कि मेरे हाथ से ब्रह्म हत्या हो चुकी है। अभी ये राजा तो पुण्यवान था, उसने देखा कि अभी मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो गया है तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी उसे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, तो इधर उधर घूम रहा है, उधर देख रहा है कि आजू बाजू में कोई है क्या। जब वो जंगल में इधर उधर जाने लगता है तो अलग अलग कुटियाँ दिखती हैं, वहाँ पर अलग अलग साधु अपना ध्यान करते हुए बैठे हैं, तो उनको पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कृपया बताइए कि मैं कैसे इस पाप से बचूं। लेकिन सभी ऋषि मुनि बोलते कि हमें पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। तो ऐसे बहुत देर तक वो ढूंढता 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 एक और एक कुटिया के पास आ जाता है, तो वहाँ पर फिर वो नॉक करता है, बोलता है कोई है क्या अंदर, क्योंकि बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, और एक छोटा बालक जो है अंदर से बाहर आता है। तो फिर वो बोलते हैं कि आइए राजा, आप आइए, हमारे यहाँ पर आए हैं, बहुत हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप बैठिए, वो पानी लेके आता है। तो राजा बोलता है कि मैं पानी लेने के मूड में नहीं हूँ, मुझे एक प्रश्न पूछना है, तो कृपया बताइए कि आपके पिता किधर हैं, क्योंकि जो ऋषि हैं वो वहाँ पर तो नहीं थे। तो बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी जो हैं भिक्षा मांगने गए हैं, और भिक्षा मांगने के भिक्षा लेके आएंगे। तो ये राजा पूछते कब आएंगे, बोले वो तो नहीं बता सकते हैं कि कब आएंगे, भिक्षा कब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं हूँ, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि कितने प्रहर में आएंगे, उस समय तो घड़ी नहीं थी, तो प्रहर के अनुसार वो टाइम देखते थे। तो फिर तो बच्चा पूछता है तो बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। तो राजा को लगता है छोटा बच्चा है, इधर बड़े बड़े साधु को नहीं पता चला या वो नहीं बता पाए, ये बच्चा क्या बता पाएगा। तो फिर भी बालक बोलता है बताइए राजा बताइए, तो राजा सोचते हैं ठीक है बता देते हैं। तो बालक को बोलता है, पूरा हिस्ट्री बता देता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। तो बालक बोलता है इतनी सी बात पहले बोल देना चाहिए था आपने, तो इतना समय लगा दिया आपने। तो राजा एकदम हक्का बक्का हो गया, बोले ये बालक को पता है। तो राजा बोलता है बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, बोले कुछ नहीं, राम जी का 3 बार नाम लो, आप मुक्त हो जाओगे इस ब्रह्म हत्या से। राजा बोलता है सचमुच इतने से हो जाएगा, बोला हाँ हो जाएगा, विश्वास रखो और पूरे विश्वास के साथ राम भगवान का नाम 3 बार लो। तो राजा खुश हो जाता है और उसको धन्यवाद करके राजा निकलता है, राम 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 ऐसा वो बोलता है, ज़्यादा बोल लेते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना है तो ज़्यादा बोलते हैं। तो वो भगवान राम का नाम लेते 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 वो वापस आ रहा था, उसी समय एक ब्राह्मण जो है वो वापस आ रहा था, जो इस बालक का पिता था। तो इसने पूछा, उनको प्रणाम किया राजा ने, तो ब्राह्मण बोलते अरे राजा आप इधर कैसे। तो फिर वो पूरा हिस्ट्री बताता है क्या हुआ, और बोलता है उस बालक ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पाप से मुक्त हो गया हूँ। वो ब्राह्मण गुस्सा हो जाता है, बोले कौन है वो बालक, चलो लेके चलो मुझे उसके पास। फिर वो उसके पास लेके आते हैं, वो देखते कि तो मेरा ही बेटा है, तो उसे डांटने लगते हैं, मुझे तुम इतने पाखंडी कैसे हो गए, इतने अविश्वास कैसे हो गए कि तुमने 3 बार राम जी का नाम बोलने के लिए कहा, हालांकि ऐसे पाप के लिए राम भगवान का सिर्फ 1 नाम काफी है, और इस कृत्य के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम एक निष्क्रिय योनि में जन्म लोगे, और अगले जन्म में वो एक गुहा जो है वो बन जाते हैं। तो ये गुहा की स्टोरी है। तो देखिए कि भगवान अपने नाम में कितना अपने दया छोड़े हैं, स्पेशली इस कलयुग के लिए। और महाप्रसाद की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जितने बेटे हैं एटलीस्ट पता नहीं, लेकिन मेरा तो है कि हम तो महाप्रसाद डिवोटी हैं। जो शुरुआत में आते थे तो सिर्फ प्रसाद के लिए आते थे, क्लास तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो प्रसाद लेके ही आगे बढ़े। तो हमारे एक मित्र हैं दाऊजी कृपा प्रभु, वो कलकत्ता में हैं, तो बता रहे थे जब हम वहाँ पर थे, तो एक बार बता रहे थे कि कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति डेली खिचड़ी खाने के लिए आता था, और आता था पहले क्या करता था ये सब कोई पता है, स्पेशली बंगाल में तो डब्बा लेके आते हैं हमेशा साथ में, और पहले लेते हैं फिर डब्बा भरते हैं वापस लेके आते हैं। तो तो फिर वो बोले अरे ये लोग ऐसा करेंगे, सभी ऐसा करेंगे और खिचड़ी कम पड़ जाएगा। तो उसको पकड़ा, तो इन्हें खुद पकड़ा उन्होंने, बोले आपको जितना खाना है खाओ लेकिन टिफिन मत भरिए, क्योंकि यहाँ पे हम सबको बांटना चाहते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो कम पड़ जाएगा, वो समझा रहे थे ऐसा। तो फिर वो मुस्लिम व्यक्ति बोलने लगा कृपया मुझे अनुमति दीजिए घर लेके जाने के लिए। फिर वो अपना बताने लगा कि उसकी बेटी है 9 साल की, उस समय 9 साल की थी। तो बोले कि वो जो भी खाती तो उल्टी कर देती थी, उसको डाइजेशन मतलब पचन नहीं होता था। लेकिन एक बार जब आपका रथयात्रा चल रहा था तो उस समय वो खिचड़ी जो है मैं घर लेके गया और मेरे बेटे को दिया, तो उसने डाइजेस्ट कर लिया। तो तब से मैं ढूंढता था कि ये मंदिर किधर है, खिचड़ी कहाँ मिलता है। 9 दिन तो मिल गया लेकिन उसके बाद, तो फिर मुझे पता चला कि आपका मंदिर यहाँ पर है और डेली शाम को आप यहाँ पर खिचड़ी बांटते हैं, तो मैं अपना काम धाम छोड़ के इस समय यहाँ आता हूँ और मेरे बेटे के लिए वो खिचड़ी लेके जाता हूँ, क्योंकि उसका जीवन जो है इस खिचड़ी के ऊपर ही चल रहा है। तो देखिए कि भगवान का जो प्रसाद है उससे उस लड़की का पूरा जीवन चल रहा है। तो ये तो भगवान तो अलग बहुत सारे हैं, उनके अगर चर्चा करेंगे दया के बारे में, तो जब भगवान राम हैं, रावण का वध नहीं करना चाहते थे। सोचिए अभी कोई अगर पति है, उसकी पत्नी को कोई अगर लेके जाता है उठाकर बिना उस पत्नी की इच्छा से, अगर कोई उठा के लेके जाता है तो पति कितना गुस्सा होगा। लेकिन राम जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं राम का वध नहीं करना चाहता था, उसे भक्त बनाना चाहता था। जगाय माताई जैसे जैसे गौर निताई ने जगाय माताई को भक्त बनाए, वैसे राम भगवान जो है रावण को भक्त बनाना चाहते थे, लेकिन वध करना पड़ा। क्योंकि राम तो इतना ही बोले थे कि जो अयोध्या जो है वह मैं इसको दे दूंगा रावण को। तो बाद में बोले फिर भरत को क्या दोगे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। तो भगवान जो है यहाँ पर उन्हें मारना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें मारना पड़ा। तो लेकिन ये सोच था उनका कि राम सोच रहे थे अगर एक व्यक्ति मुझे द्वेष करता है तो उसे उसका द्वेष जो है कैसे मिटाया जाए। तो भगवान ने यहाँ पर वो उनका ये सोच था कि एक बहुत सारे व्यक्ति हैं जो द्वेष करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है कम हो गया और उसे अभी आगे जाने के लिए मतलब भगवान की तरफ आने के लिए रफ्तार मिल गई है। तो ऐसे सभी भगवान भगवान में जो अवतार हैं, खुद भगवान और भगवान के अवतार जो हैं दया का, जो ये उदाहरण स्थापित करते हैं। तो अभी हम थोड़ा इच्छा की तरफ जाएंगे, थोड़ा जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं जनरली हम देखते कि उठपटांग इच्छाएं होती हैं ज़्यादातर। भक्त बनने के बाद थोड़ा उठपटांग चीज़ें कम हो जाती हैं, तो अच्छी इच्छाएं मतलब गुड डिज़ायर बैड डिज़ायर होते हैं। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने जाते हैं बढ़ते हैं तो अच्छी इच्छाएं जो हैं हमारे अंदर आने लगती हैं और जो बुरे विचार हैं या बुरे इच्छाएं हैं वो दूर दूर जाते हैं। लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चला कि हमारे पास हमारे हृदय के अंदर कितनी इच्छाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आकाश है जो स्का है उसका पेपर बनाए जाए, जो पेड़ है उनका पेन बनाए जाए और जितने भी नदियां हैं समुन्द्र है उनका इंक बनाए जाए, वो सब खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं खत्म होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कोई बता नहीं सकता कि हमारी इच्छाएं कितनी है। तो श्रील प्रभुपाद को जब वो उनके अंतिम समय पर उनको पूछा गया प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है, प्रभुपाद बोलते कोई इच्छा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है वो दिखाना चाहते हैं, जब हम भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं तो उसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रभुपाद वही एक उसके पहले बोलते हैं एक प्रवचन में बोलते हैं, अगर किसी जीवात्मा का इच्छा होता है एक गुलाब जामुन खाने की, अगर वो शरीर त्याग देता है तो उसे अगले जन्म में एक गुलाब जामुन खाने के लिए आना पड़ता है। अब ये एक गुलाब जामुन खाने की इच्छा वो पूरा करते करते वो और बहुत सारी इच्छाएँ तैयार हो जाएंगी, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए हमें इस जो इच्छा है उनको प्यूरिफाई करना चाहिए। तो ये उठपटांग इच्छा है, मतलब देखिए अभी बहुत सारा ये वायरस चल रहा है, इंडिया में नहीं है चाइना में है कोरोना वायरस। तो ये वायरस मतलब जीवाणु, तो ये जीव जो है उसकी कितनी भयानक इच्छा है देखिए। तो देखिए इच्छा के बिना तो गए नहीं वहाँ पर, जीव मतलब वो एक सजीव है, आत्मा है, तो उसने पिछले जन्म में क्या इच्छा की होगी कोई सोच सकता है? वो भी बाहर से मारने का नहीं, अंदर जाके मारना है किसी को, तो ऐसी इच्छा। और देखो भगवान को देखो कैसा प्लान करना पड़ता है, वो अमेरिका से इधर आया, वहाँ पर कुछ तो हुआ, उसके बाद फिर वो हैंडल नहीं कर पाया उसको और फिर ये जीवाणु फैल गया। तो ऐसे उटपटांग इच्छाएं जो है जीवात्माएं करते हैं। अगर हम सोचेंगे कि अलग अलग योनि में अलग अलग प्राणी जो है क्या क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी इच्छाएं जो है पिछले जन्म में ऐसे होती है। तो ये इच्छाएं जो है हम देखते हैं उसके कारण क्या क्या होता है। बीज अनुशय, बीज मतलब ओरिजिनल कॉज और बीज और अनुशय मतलब इच्छा। तो इच्छा जो है इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? इच्छा। इस यहाँ पर कंटिन्यू रहने की जो इच्छा है और यहाँ पे सड़ने का जो कारण है वो है इच्छा। और भगवतम वापस जाने का कारण क्या है? इच्छा है। तो आइदर इधर आने की इच्छा या फिर यहाँ से वापस जाने के लिए कारण जो है वो है इच्छा ही है। अगर हम फिर से हमारे घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें तीव्रे न भक्ति योगे न, मतलब हमें तीव्रता से भक्ति करना पड़ेगा। जैसे हम भक्ति करते हैं तो वैसे हमारी अवांछित इच्छाएं चली जाती है। तो ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं एक प्रवचन में, वी आर स्ट्रेंजर्स इन फॉरेन लैंड, हम परदेश में अपरिचित हैं। सोचिए एक तो परदेश है और वहां पर अपरिचित है, सोचिए क्या सिचुएशन रहेगा। अगर हम हमारे इंडिया में भी कई जगह पर जाते हैं और हमको कुछ पता नहीं है तो हालत खराब हो जाती है। अगर परदेश में जाके नियम अलग है, सब कुछ अलग है, हमारे लिए कंप्लीटली नया है, वहां पर हम अपरिचित हैं तो क्या होगा? और ऐसे जगह पर हम क्या करते हैं, कुछ चीजें फॉर एग्जाम्पल घर बांधने का प्रयास करते हैं, बैंक बैलेंस लाने का प्रयास करते हैं, मतलब जो भौतिक इच्छा है उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए ना, अभी हम फॉरेन, अभी आप बोलेंगे अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम ये पूरे भौतिक जगत में हम अपरिचित हैं और हम कहाँ पर हैं, ये पूरा भौतिक जगत हमारे लिए एक परदेश है, एक फॉरेन लैंड है। ऐसा नहीं कि यहाँ से अमेरिका गए तो हो हमारे लिए फॉरेन लैंड है, ऐसा नहीं, अमेरिका भी है और इंडिया भी, ये भारत भी हमारे लिए एक फॉरेन लैंड ही है, क्योंकि हमारा माई देश कौन सा है? भगवत धाम है। तो भगवत धाम से यहाँ आए मतलब ऑलरेडी हम फॉरेन में आ चुके हैं और यहाँ पर आकर हम सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोचिए कितना मूर्खता कर रहे हैं हम लोग। तो इच्छा देखिए, हम यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ पर सेटल होने का प्लान करते हैं। देखिए कोई व्यक्ति परिवार से कितना दूर रह सकता है? ज़्यादा दिन दूर रह नहीं सकता है। तो इसलिए हमें वापस हमारे परिवार के पास जाने का प्रयास करना चाहिए, जो हमारा परिवार भगवत धाम में है, गोलोक में है। तो यार भौतिक जगत में हम देखते हैं, एक 8 दिन अगर हम कहीं चले जाते हैं मंदिर से बाहर तो तुम वापस आने की तुरंत इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ पर अपना मन नहीं लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस भौतिक जगत में हमारा मन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें वापस हमारे घर जाना है। तो हम तो इच्छा कर देते हैं लेकिन भगवान जो है ये पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। देखिए अब हम एक छोटी सी इच्छा जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज का ये प्रवचन है, इसमें वो बताते हैं कि यहाँ पर जितने बैठे हैं वो सबकी इच्छा होती है कि हमें चपाती मिले, है ना, एक चपाती, ज्यादा नहीं, कभी कभी अगर लेट हो जाते तो एक तो चपाती मिल गई तो बहुत हो गया। तो एक चपाती कैसे हमारे प्लेट में आती है, तो महाराज बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि एक चपाती खाने की इच्छा के लिए भगवान को क्या क्या योजना करना पड़ती है। तो भगवान सॉरी परम पूज्य राधानाथ महाराज जो है वो कंपेयर करते हैं, एक सिटी में चपाती खाना, एक गांव में चपाती खाना। तो हम ठीक है दोनों हम चर्चा करते हैं। तो गांव में चपाती खाना इतना मुश्किल नहीं है, गांव में क्या है, खेत में बीज डाल देते हैं तो पानी देना पड़ता है, 3 महीने बाद फसल आती है, पोता भर के घर में लेके आते हैं, माताएं उधर सिर पे टोकरी में गेहूँ डाल के लेके जाते हैं, वो लाते हैं, या फिर घर में जो ग्राइंडर होता है उसमें वो आटा बनाकर चपाती खाते हैं। इतना लंबी प्रोसेस नहीं है गांव में, लेकिन वही अगर शहर में खाना है अगर हमें खाना है 9:15 बजे अगर हमें चपाती खाना है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे पहले खेत को कल्टीवेट करना पड़ता है। जो खेत है ऐसे नहीं कि किसी खेत में हम बीज डाल सकते हैं, उसको पहले कल्टीवेट करना पड़ता है। इसलिए कल्टीवेटर लगाकर उस खेत को अच्छा करना पड़ता है। उसके अंदर जो ना जो भी कचरा है, जो भी पत्थर है, उस सबको निकालना पड़ता है। और पत्थर ऑटोमेटिक नहीं जाते, उसके लिए लेबर लगता है और लेबर भी बहुत महंगा है, लेबर भी मिलते नहीं हैं आजकल। तो उसके लिए वो एक बड़ा मैनेजमेंट होता है, क्योंकि कम लेबर है और उनका इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्लानिंग पहले ही करना पड़ता है। उसके बाद पानी डालना पड़ता है खेत को, तो उसके बाद फिर बीज लाना पड़ता है, सीड डालना पड़ता है। सीड ऐसा नहीं कि मिल जाता है, तो सीड का बड़ा इंडस्ट्री होता है, अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं। तो इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ता है, और सेटअप करना है मतलब जगह चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसके बाद वो मशीनरी होती हैं, उसके लिए फिर वेल्डर्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद फिर जो ये बीज बनने के बाद फिर वो जाता है दुकान पर, तो उसके लिए लॉजिस्टिक लगता है। तो वहाँ पर जब दुकान में जाते हैं, दुकान से फिर किसान जो है वो बीज लेता है और अपने खेत में डालता है। डालने के बाद ऐसा नहीं कि वो 3 महीने में ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पानी देना पड़ता है हर सप्ताह, 8 दिन में पानी देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे सिटी में ना 24 घंटा लाइट होता है, ऐसे गांव में लाइट नहीं होता है, 24 घंटा होता है लेकिन 24 घंटा नहीं होता है, लोड शेडिंग बोलते हैं उसे, सिर्फ रात को ही आता है। तो किसान को रात को जाकर खेत में रुकना पड़ता है और फिर पानी देना पड़ता है। जब लाइट आता है तो लाइट आया था मतलब पानी नहीं आया, तो उसके लिए मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिकल मोटर, 5 HP 10 HP का मोटर चाहिए। उसके बाद पाइपलाइन करना होता है, तो उससे कि अभी मोटर का इंडस्ट्री होता है, ऐसा नहीं कि मोटर आ जाता है, तो मोटर बनाने के लिए इंडस्ट्री होता है, उसके लिए फिर पूरा सेटअप, वो पूरा जैसा हमने अभी बताया तो वो सेटअप होता है। उसके बाद पाइप का भी, जैसे अलग अलग पाइप होते हैं, उसके लिए सेटअप होता है। और आदमी को उधर खड़ा रहना पड़ता है रात भर, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, पाइप बदलना होता है। तो ये इतना होने के बाद ऐसा नहीं कि हो गया, और हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी ऐसे नहीं आती है, उसके भी जो बड़ा मेहनत होता है, ये सब बड़ा इंडस्ट्री होता है, लोग होते हैं। तो ये सब होने के बाद जब हार्वेस्टर लाते हैं, 3 महीने हार्वेस्टर लाते हैं, तो हार्वेस्टर का भी हम देखेंगे तो उसका भी बड़ा कंपनी होता है, और जितना ज़्यादा पैसा लगता है तो उसके लिए फिर लोन लेना पड़ता है। तो लोन के लिए बैंक सेटअप होता है, सोचिए इतने सारे बैंक्स हैं, उसका सेटअप होता है, उसका फिर RBI से लिंक होता है, तो उसके अंदर एम्प्लॉइज होते हैं। तो उसके बाद जब लोन सैंक्शन के लिए फिर आपको बहुत सारा इधर उधर भागना पड़ता है, तो अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, उसका सेटअप होता है। तो ये सब होने के बाद जो इंडस्ट्री जगह लेता है, फिर बाकी चीज़ें होते हैं। तो ये हार्वेस्टर से जब हम गेहूँ निकलते हैं, फिर उसको ट्रैक्टर में डाला जाता है या फिर बैलगाड़ी में डालकर घर पे लेके आना होता है, और घर पे लेके आना मतलब उसे प्रॉपरली रखना पड़ता है, उसको उठाकर अंदर डाल के उसको प्रॉपर पाइल करके रखना होता है। उसके बाद फिर मार्केट लेके जाते हैं, किसान तो घर में तो नहीं रखेगा क्योंकि इतना खर्चा किया तो उसका तो वापस निकलना चाहिए, फिर वो मार्केट लेके जाते हैं। तो मार्केट के लिए वापस गाड़ी चाहिए, ट्रक या फिर ऐसा कुछ चाहिए, तो ट्रक जो है वो मार्केट लेके जाता है। फिर वो मार्केट वाला जो व्यक्ति है वो तो उधर रख नहीं सकता खुले में, उसके लिए वेयर हाउस चाहिए, फिर वो वेयर हाउस बनाना है, उसका ख्याल रखना है, तो वेयर हाउस में चूहा नहीं जाए उसका फिर ख्याल रखते हैं। उसके बाद फिर वो सिटी वाले जो हैं वो खरीदते हैं, और हम देखते हैं कि वो भी तुरंत फिर घर में नहीं आता है, सिटी में आए मतलब घर में नहीं आता है, उसके पहले मॉल में जाएगा, उसके पहले उस आटा बनाते हैं, तो आटा बनाने के लिए वापस फिर वो इंडस्ट्री अलग होता है, उसका पैकिंग होता है, वो पैकिंग के लिए जो मटेरियल लगता है उसका इंडस्ट्री अलग होता है, उसका सेटअप होता है। ये होने के बाद जब वो शॉप में आता है, मॉल में आता है, उसका सेटअप अलग होता है, उसको इतना बड़ा जगह चाहिए, इतना सारे एम्प्लॉइज चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मॉल बनाए और उसमें सिर्फ आटा ही रखा है ना, ऐसा तो नहीं होता है, उसके लिए तो बाकी सब चीज़ें भी रखना पड़ता है, तो बाकी आइटम भी रखना पड़ता है उसके साथ, तो उसका बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो उसके बाद अगर कोई जाके जाता है आटा लेता है तो फिर घर पे लाता है, सॉरी एक चीज़ भूल गए, तो ये जो लॉजिस्टिक होता है उसके लिए फ्यूल लगता है ना, उसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, और ये फ्यूल तो इंडिया में नहीं मिलता है, वो तो गल्फ कंट्री से आता है। अभी गल्फ कंट्री से आना है मतलब उसमें पॉलिटिशियन लोग आ गए, तो पॉलिटिशियन लोग आ गए, वो जब वो शॉर्ट आउट हो गया तो जहाज से आता है, जो बोट है बोट से ईंधन आता है, तो बोट उसका एक अलग इंडस्ट्री होता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये घर में आटा आ गया तो ऐसा नहीं कि चपाती हो गया, तो आटा बुनने के लिए भी उसका भी एक माप होता है, तथा जो अगर करते हैं कुकिंग तो उसको उनको पता रहता है, पूरी के लिए अलग होता है, चपाती के लिए अलग होता है, पराठा के लिए अलग होता है। ठीक है, आटा बनाया, रोलिंग करने के लिए बेलन लगता है, और उसके बाद फिर अभी उसको सेकना है, सेकने के लिए गैस होता है, तो गैस का आप देखते पूरा वो अलग सेटअप होता है, अलग इंडस्ट्री होता है उसका। ठीक है, गैस हो गया, लेकिन वो सेकने के तवा होता है, उसके भी बनाने वाला कोई अलग इंडस्ट्री होता है। अभी ठीक है, तवा पे सेक दिया, रोटी तैयार हो गई, रखेंगे कहाँ, हॉटपॉट, तो वो हॉटपॉट के लिए अलग पूरा एक सेटअप होता है। ठीक है, हॉटपॉट में आ गया, उसके बाद भगवान को अर्पण करना है, तो उसको ठीक है पत्तल में अर्पण करे, ठीक है वो भी प्लेट में, तो पत्तल उसका भी अलग सेटअप होता है। अभी हमको खाना है तो हम तो हाथ में तरीके तो नहीं खाएंगे, उसके लिए प्लेट लेना पड़ता है, तो प्लेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अब अलग सेटअप होता है। तो उसके बाद पेट में जाता है, तो सोचिए एक चपाती के लिए इतना सारा सेटअप करना पड़ता है, तो सोचिए एक चपाती के लिए इतना कुछ, मतलब हम एक इच्छा करते हैं एक चपाती खाने के लिए, तो भगवान को कितना सोचना पड़ता है इतना सब। तो ये जीवात्मा का डिजायर है, तो भगवान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। तो लेकिन कुछ कुछ अच्छे डिजायर भी होते हैं, जैसे भक्ति सदनसरू ठाकुर ने एक डिजायर किया था कि विदेश में अंग्रेजी में प्रचार हो, तो प्रभुपाद ने, इसलिए प्रभुपाद ने वो पूरा किया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी वो चपाती पचाने के लिए भी समय लगता है, फिर अगर नहीं पचा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अलग योजना होती है, तो सेटअप होता है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन समय हो गया है, अगला सेटअप की तैयारी करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भागवत की जय।